नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक में 160 करोड़ रुपए की भूमिगत बिजली लाइन परियोजना शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दधीची देहदान समिति के वरदान फिल्म महोत्सव में शामिल हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लाल किला बम विस्फोट षड्यंत्र में शामिल दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली नगर निगम ने एमटीएस डीवीसी कर्मचारियों का वेतन 17,500 रुपए से बढ़ाकर 27,900 रुपए किया और भारतीय जनसंचार संस्थान का 57वां दीक्षांत समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित होगा। दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक में 160 करोड़ रुपए की भूमिगत बिजली लाइन परियोजना आज शुरू की। इस परियोजना के अंतर्गत 26 प्रमुख सड़कों पर फैले लगभग 52 किलोमीटर लंबे बिजली के ओवरहेड तारों को भूमिगत किया जाएगा। इसके साथ ही मंडोली में ग्रिड सब स्टेशन और द्वारका तथा गोयला खुर्द में बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास भी किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल तकनीकी बदलाव नहीं है बल्कि चांदनी चौक क्षेत्र को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुंदर बनाने का संकल्प है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह क्षेत्र हमेशा से व्यापार और सांस्कृतिक का जीवंत केंद्र रहा है और यहाँ की हवेलियाँ, इतिहास और गलियाँ विरासत को संजोए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर चलना चाहती है जिससे राजधानी में बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
चांदनी चौक एक बहुत बड़ा व्यापार स्थल है, दुकानदार हजारों की संख्या में यहाँ पे काम करते हैं और लाखों विजिटर, लाखों ग्राहक रोजाना इस बाजार में आते हैं। उनकी सुरक्षा, व्यापार ठीक से हो, सबको किसी को कोई दिक्कत ना हो, इस अप्रोच के साथ में ही इस बहुत ही कंजेस्टेड वॉल सिटी में काम करना जरूरी है।
वहीं दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि इस परियोजनाओं के अंतर्गत आधुनिक भूमिगत केबल बिछाए जाएंगे और लगभग 500 नए फीडर पिलर स्थापित किए जाएंगे। साथ ही आकर्षक सजावट स्ट्रीट लाइट खंभे लगाए जाएंगे और अनुपयोगी ढांचे को हटाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि डिजिटल ट्विन तकनीक के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर एसेस मैनेजमेंट और प्रभावी संचालन योजना सुनिश्चित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, पूर्वी दिल्ली कैंपस और दधीक्ष देह दान समिति के वरदान फिल्म महोत्सव में शामिल हुई। इस दो दिवसीय उत्सव का उद्देश्य युवाओं में अंगदान के बारे में सिनेमा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अंगदान और देहदान जैसे संवेदनशील विषय पर कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करना प्रेरणादायक प्रयास है। ऐसे आयोजन समाज में नई सोच पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है बल्कि किसी जरूरतमंद को नई जिंदगी देने का सबसे बड़ा उपहार है।
दिल्ली में ऐसी कोई संस्था नहीं थी कि जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ऑर्गन डोनेशन पे काम करे। हमने दिल्ली में एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बनाया सोटो। सितंबर से लेके अब तक 838 लोगों ने अपने आप को इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराया है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने दिल्ली के लाल किला बम विस्फोट षड्यंत्र में शामिल दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है। गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान जम्मू कश्मीर के गांधरबल निवासी जमीर अहमद अहनगर और श्रीनगर निवासी तुफैल अहमद भट्ट के रूप में हुई है। NIA के अनुसार दोनों इस षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने विस्फोट के मुख्य आरोपी को हथियार मुहैया कराए थे। 10 नवंबर 2025 को हुए इस विस्फोट में 11 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य लोग घायल हुए थे। मुख्य आरोपी उमर उन नबी भी विस्फोट में मारा गया। दिल्ली नगर निगम ने एमटीएस डीवीसी कर्मचारियों का वेतन 17,500 रुपए से बढ़ाकर 27,900 रुपए कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने ये जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि 30 वर्षों से ये लंबित मांग पूरी होने से लगभग 4,000 परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये कदम कर्मियों के परिश्रम और अधिकारों के प्रति नगर निगम की प्रतिबद्धता दर्शाता है। वहीं दिल्ली नगर निगम की राजभाषा विभाग द्वारा आज निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में निगम आलोक पत्रिका का विमोचन और हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदी कार्यशाला में राजभाषा के प्रभावी प्रयोग, प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के संवर्धन तथा भाषा की सरलता और सशक्त अभिव्यक्ति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि राजभाषा हिंदी केवल संवाद का माध्यम ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और प्रशासनिक सशक्तिकरण का आधार है। श्रीमती शर्मा ने कहा कि नगर निगम में हिंदी के प्रयोग को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक सफाई के कारण राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कल और शनिवार को जलापूर्ति बाधित रहेगी। राजधानी के रजोकरी गांव, मैदानगढ़ी, पूर्वी कैलाश के बी ब्लॉक, धोबी घाट गढ़ी में कल और शनिवार को मस्जिद मोठ, सराय कालेखां के डीडीए फ्लैट, किशनगढ़ और सिद्धार्थ एनक्लेव सहित आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत परिसर में छात्र सुविधा केंद्र, भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र, खेल सुविधा केंद्र, मल्टीमीडिया संगोष्ठी कक्ष तथा 5 आधुनिक कक्षाएं और पुस्तकालय में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। एक रिपोर्ट।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस अवसर पर कहा कि इन परियोजनाओं से विद्यार्थियों को एक समग्र तथा अनुकूल शैक्षणिक वातावरण, भारतीय ज्ञान संस्कृति तथा परंपराओं के अध्ययन तथा अनुसंधान, छात्रों को डिजिटल और सुव्यवस्थित सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि राजधानी में किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान को बजट के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने बताया कि भविष्य में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 7,000 कक्षाओं को आधुनिक कक्षाओं में परिवर्तित किया जा रहा है। वहीं परीक्षा उपरांत विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक भ्रमण और इंटर्नशिप के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्ण ने आज नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा ग्रैंड चैलेंज के दूसरे चरण के विजेताओं को सम्मानित किया। मंत्रालय ने कहा कि इस चैलेंज का उद्देश्य देश की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना है ताकि एक सुरक्षित और सुदृढ़ डिजिटल व्यवस्था का निर्माण किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 की उस पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से संबंधित एक अध्याय है। न्यायालय ने सभी प्रतियों को जब्त करने के साथ साथ इसके डिजिटल प्रारूपों को भी हटाने का आदेश दिया है। साथ ही केंद्र और राज्य प्रशासन को तत्काल न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है और किसी भी रूप में निर्देशों का उल्लंघन करने पर गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका को कमजोर करने और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की सोची समझी साजिश रची गई है। पीठ ने कहा कि न्यायपालिका पर अमिट प्रभाव डालने वाला ऐसा दुष्प्रचार आपराधिक अवमानना की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को तय की है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव उद्देश्यों के लिए राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले व्यय पर सीमा लगाने के निर्देश देने वाली याचिका पर केंद्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने केंद्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य महिला नेतृत्व वाले विकास पर है। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए बेहतर अवसर, आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना नीतिगत ढांचे के केंद्र में है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में आयोजित महिला नेतृत्व सम्मेलन सशक्त नारी विकसित भारत के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कही।
श्रीमती अन्नपूर्णा ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया और पीएम स्वनिधि जैसी कई सरकारी पहलों पर उल्लेख किया जिन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। केंद्रीय बजट 2026 का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष महिला केंद्रित योजनाओं के लिए लगभग 5,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। श्रीमती अन्नपूर्णा ने बताया कि प्रस्तावित शी मार्ट पहल महिलाओं के लिए एक समर्पित मंच प्रदान करेगी और लोकल फॉर ग्लोबल विजन के अंतर्गत उनके उत्पादों को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और 2 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य इस संख्या को बढ़ाकर 6 करोड़ करने का है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अर्जुन शर्मा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC का 57वां दीक्षांत समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे।
IIMC के कुलाधिपति तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान स्नातक विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया है कि संस्थान के सभी 6 परिसरों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के शीर्ष विद्यार्थियों को कुल 35 पदक प्रदान किए जाएंगे। इनमें 23 नकद पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति IIMC नई दिल्ली में नए अकादमिक भवन और छात्रावास की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा श्री वैष्णव मंत्रालय और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इंक्यूबेशन सेंटर में क्रिएटर्स लाउंज का भी उद्घाटन करेंगे। ये आयोजन IIMC में बुनियादी ढांचे और अकादमिक उत्कृष्टता के निरंतर विस्तार तथा उसे सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली पुलिस ने फर्जी प्रवर्तन निदेशालय ED अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की अपर उपायुक्त ऐश्वर्य शर्मा ने कहा कि CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों का पता लगाकर गाजियाबाद के वैशाली इलाके से गिरफ्तार किया गया। श्रीमती शर्मा ने बताया कि आरोपियों के पास से भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वर्दी तथा पहचान पत्र, एक पिस्तौल और लूटी गई 7 घड़ियां बरामद की गई हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यवस्थित खाद्य नमूनाकरण के जरिए मिलावट पर पूरी तरह रोक लगाना और खाद्य सुरक्षा मानकों का बेहद कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस स्पेशल ड्राइव के दौरान आज कुल 66 खाद्य नमूने लिए गए, जिनमें 54 निगरानी नमूना और 12 कानूनी नमूना शामिल थे। उत्तर रेलवे ने होली के मद्देनजर सभी प्रकार के पार्सल के यातायात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध अगले महीने की 1 तारीख से 3 तारीख तक लागू रहेंगे। ये प्रतिबंध नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों पर लागू रहेगा। होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए विभिन्न रेलवे जोन में 18 मार्च तक 1244 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि यदि मांग बढ़ती है तो इन विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत के मेडिकल कॉलेज में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए भविष्य के नवाचार केंद्रों के रूप में उभरने की क्षमता है। नई दिल्ली में मेडिकल कॉलेज रिसर्च कनेक्ट 2026 का उद्घाटन करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि ये संस्थान छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान करने के अवसर प्रदान कर सकते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज कहा कि सरकार राष्ट्रीय भारत के सीमा शुल्क प्रशासन को अधिक प्रौद्योगिकी आधारित, पारदर्शी और व्यापार अनुकूल बनाने के लिए उसे मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री चौधरी ने कहा कि ये दिन सीमा पार माल की सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए है। राजधानी में दिनभर धूप खिली रहने के साथ मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। विभाग के अनुसार कल सवेरे मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक में 160 करोड़ रुपए की भूमिगत बिजली लाइन परियोजना शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय और दधीची देह दान समिति के वरदान फिल्म महोत्सव में शामिल हुई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने लाल किला बम विस्फोट षड्यंत्र में शामिल 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली नगर निगम ने MTS DVC कर्मचारियों का वेतन 17,500 रुपए से बढ़ाकर 27,900 रुपए किया। और भारतीय जनसंचार संस्थान का 57वां दीक्षांत समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।